نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فتح مکہ میں سے اب وہ وقت ہے کہ جس میں کہہ لیجئے کہ 21 سال کے صبر کا بدلہ ملنے والا ہے. اسلام کا یہ خوبصورت مزاج ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق چلیے. آپ نے مکہ کے 13 سال بھی ہر طرح کے حالات میں وہاں گزارا کیا اور 8 سال مدینہ میں جانے کے بعد بھی. اور آج وہ وقت آ گیا کہ جہاں مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوتا ہے اور اس کی بتوں سے تدخیر ہے. یعنی فتح مکہ میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کئی بت توڑے. آئیے ذرا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار اور مہاجرین کے جلب میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے. آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے. تصور میں بھی آتا ہے اور اللہ نہ کرے یہ دن کبھی ہم دوبارہ دیکھیں اپنی زندگی میں. آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوک کر مارتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا, باطل جاننے والی ہی چیز ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 ہے. اسی طرح جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید. حق آ گیا اور باطل کا چلنا پھرنا ختم ہو گیا. اور آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بر گرتے جا رہے تھے. آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا. تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی یعنی چابی لی کیز. پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا. اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فالگری کے تیر تھے. آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے, اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے. آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی, اسے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں. کیا پتہ چلا کہ بہت دن کے صبر کے بعد پھر ایک دن غلبے کا ہوتا ہے, آخر کب تک. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق کی چوٹ جب باطل پہ پڑتی ہے تو اس کا دماغ ہی نکال دیتی ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت چونکہ احرام کی حالت میں نہیں تھے تو صرف طواف کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ ہر موقع کے مطابق نیکیاں مختلف ہوتی ہیں. کبھی عبادت کا موڈ ہوتا ہے, کبھی عملی زندگی کے اس طرح کے موڑ آ جاتے ہیں کہ حق کو پھیلانے اور حق کو نصب کرنے کے لیے انسان کی کوششیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی بالکل نہیں گھبرائے بتوں کو مارتے ہوئے, تو یہ آپ کی شرک سے نفرت بھی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کبوتری بھی توڑی, تو برائی کو خرابی کو جب جہاں جس ممکن حد تک انسان ہٹا سکے ہٹانا بھی ہے اور مٹانا بھی ہے. خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قریش سے خطاب, کیا وہ منظر ہوگا جن آنکھوں نے دیکھا وہی اس کو جانتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا. حضرت اسامہ اور بلال رضی اللہ عنہما بھی اندر ہی تھے. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا, یعنی بالکل دروازے سے اپوزٹ جو دیوار تھی. جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے. 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے, ایک کھمبا یعنی پلر دائیں ہاتھ اور 3 کھمبے یعنی 3 پلرز پیچھے. ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے. پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی. اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا, تمام گوشوں میں تکبیر و تحید کے کلمات کہے, پھر دروازہ کھول دیا. قریش سامنے مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے. قریش نیچے تھے. انہیں یوں مخاطب فرمایا, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। इसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारे जत्थों को शिकस्त दी। सुनो, बैतुल्लाह की कलीद बरदारी यानी चाबी उसकी रखना और हाजियों को पानी पिलाने के अलावा सारा एजाज या कमाल या खून मेरे इन दोनों कदमों के नीचे है। याद रखो, कत्ले खता शिबे अमत में जो कोड़े और डंडे से हो मुगल्लस दियत है, यानी 100 ऊंट जिनमें से 40 ऊंटनियों के शिक्म में इनके बच्चे हों। यानी आप देखिए कि साथ ही साथ कानून भी बन रहा है। हमारे यहाँ तो कानून बनने में सालों की, आप तो सदियों लगने वाली बात हो गई। आपने मक्का फतह करते ही साथ उसमें इस्लाम के कवानीन को रखा और अल्लाह की बड़ाई को सामने रखा और फरमाया, कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत की नकबत और बाप दादा पर फ़ख्र का खात्मा कर दिया। सारे लोग आदम से हैं और आदम मट्टी से। इसके बाद चाहे तिलावत फरमाई, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुबा व कबाइला लितअरफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज्जत वही है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। तो ये एक मुख्तसर सा खुतबा था। उस मौके पे एक तो कबाइल और आबा परस्ती की बात को यहाँ रखा गया, दूसरी बात इज्जत का मेयार तकवा है, औरत और मर्द की डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की गई और यहाँ फिर वो सब बड़ाई और छोटाई के सारे मेयार एक बराबर कर दिए गए। क्या पता चला कि एक अच्छा लीडर वही होता है कि जो फौरन कवानीन को इम्प्लीमेंट करता है, बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटा कर देता है और जो आम लोग होते हैं वो छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं। और फिर सबसे खूबसूरत चीज़ क्या, आज कोई सरजिंच नहीं। यानी 21 साल के दुश्मन जिन्होंने इन्हीं गलियों में खून बहाए, ओजड़ियाँ फेंकी, पत्थरों पे लिटाए गए मुसलमान, आज उन सब को एक ही पुकार लग रही है कि आज तुम पर कोई पकड़ नहीं। इसके बाद आपने फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने कहा, अच्छा, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहबजादे हैं। आपने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजिंच नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये है खूबसूरत अखलाक, जब किसी पे काबू पा लें तो उसको अल्लाह के लिए छोड़ दें। और असल में ये छोड़ना दूसरों को हमेशा का कैदी बना देता है। आप किसी हुस्ने सलूक से मुतासिर होकर बहुत सारे लोग मुसलमान हुए थे। काबे की कुंजी हक बहकदार रसीद, यानी हक हक वाले को पहुंच गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में बैठ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हों ने, जिनके हाथ में काबे की कुंजी थी, हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ किया, हजूर, हमारे लिए हुज्जाज को पानी पिलाने के एजाज़ के साथ खाने काबा की चाबी रखने का एजाज़ भी शामिल फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आप पर रहमत नाजिल करें। एक और रिवायत के मुताबिक ये गुजारिश हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों ने की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं? इन्हें बुलाया गया। आपने फरमाया, उस्मान रदी अल्लाहु अन्हो, ये लो अपनी कुंजी यानी अपनी चाबी ले लो, टेक योर कीज़। आज का दिन नेकी और वफादारी का दिन है। तबकात इब्ने साद की रिवायत है कि आपने चाबी देते हुए फरमाया, इसे हमेशा हमेश के लिए ले लो, तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। ए उस्मान, अल्लाह ने तुम लोगों को अपने घर का अमीन बनाया है, लिहाजा इस बैतुल्ला से तुम्हें जो कुछ मिले इससे मारूफ के साथ खाना। ये है अंतुद्दुलमानात इला अहलिहा। सूरत निसा में ये आयत जब पढ़ी जाती है तो यही वाक्य वहाँ कोट किया जाता है। यानी आपने फिर किसी की हक तलफी नहीं की बल्कि हक दिए। इसके बाद क्या हुआ, ऐसे लग रहा है ना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं खाना काबा का इन सारी चीज़ों से आबाद होना। और अब एक और खूबसूरत मरहला, काबे की छत पर अजाने बिलाली। अब नमाज का वक्त हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان دیں. اس وقت ابو سفیان بن حرب، عطاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے. عطاب نے کہا کہ اللہ نے اسید کو فوت کر کے، یعنی اپنے باپ کی طرف اشارہ ہے، ان پر یہ کرم کیا کہ وہ یہ اذان نہ سن سکا، ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی. کتنی بڑی بات ہے، دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیا، اللہ کے نبی اور آپ کے کہنے پہ بلال نے. اس پر حارث نے کہا، سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا. اس پر ابو سفیان نے کہا، دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی. یعنی اتنے انسیکیور فیل کر رہے تھے ابو سفیان. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں، پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرا دی. اس پر حارث اور عطاب بول اٹھے، اشہدو ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی قسم، کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا، اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی. یعنی جو وہ سوچ رہے تھے ویسے ہی ہوا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالنے کے لیے اس قسم کے معجزات برپا کر دیا کرتے تھے. آج بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی. سمجھنے کے موڈ میں انسان جب نہیں ہوتا تو بڑی آسان بات بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، اور جب گتھیاں سلجھانے کا موڈ ہوتا ہے تو بڑی مشکل چیزوں کو بھی انسان سجھا لیتا ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ کیسے خاموشی سے لوگ اسلام میں آ گئے. میں ان سب چیزوں کو پڑھتے ہوئے یہی سوچ رہی ہوں کہ اللہ تو ہمیں بھی تو پھر اسی چیز کی توفیق دے نا کہ سانپ بھی مر جائیں اور لاٹھیاں بھی نہ ٹوٹیں. ہم تو اپنوں کو بیگانہ بنا لیتے، آپ نے بیگانوں کو اپنا بنا لیا. بہرحال حضرت بلال کی اذان کے بعد فتح یا شکرانے کی نماز ہوئی. اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہانی رضی اللہ عنہا، جو ابو طالب کی بیٹی تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے. وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی 8 رکعت نماز پڑھی. یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز. ام ہانی نے بھی اپنے دو دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی. آپ نے فرمایا، ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. کیا حکمت والے جملے ہیں، کیسے آنر دیتے تھے آپ، کیسے عزت دیتے تھے آپ. اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ام ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہرہ ور ہوئیں. یعنی جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا پھر جواب دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں لوگ خود ہی ایک دوسرے سے نوٹ لیا کرتے تھے اور اپنے اوپر کوئی بات نہیں آنے دیتے تھے. اکابر مجرمین کا خون رائے گاہ قرار دیا گیا. فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں میں سے 9 آدمیوں کا خون رائے گاہ قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. ان کے نام یہ ہیں، آپ کہہ لیجیے آج کی زبان میں اشتہاری مجرم یا اشتہاری ملزم. کچھ ایسے ملزم ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اشتہار لگا دیے جاتے ہیں کہ زندہ یا مردہ جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو مار دو. ان میں سے جو نام تھے، عبدالعزہ بن ختل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن صبابہ، حبار بن اسود، ابن قتل کی 2 لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف گایا کرتی تھی، سارا جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی. اسی کے بعد حاطب رضی اللہ عنہ کا خط پایا گیا تھا. اس واقعے کے شروع میں ہم نے یہ بات سنی تھی. ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی، اور آپ نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا. لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس امید پر خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا. تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے رضی اللہ عنہ. کیا پتہ چلا، बड़े से बड़े जुर्म को अल्लाह माफ़ कर देते हैं, बड़ी बड़ी ख़ताओं पे पर्दे डालते हैं। वो सत्तारुल अय्यूब है। अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे पर्दे रख ले, अल्लाह तो हम से बेहतरीन काम ले और पिछली ज़िंदगी की ख़ताओं को दरगुजर फरमा। इकरमा बिन अबी जहल ने भाग कर यमन की राह ली, लेकिन उनकी बीवी खिदमत नबी में हाजिर होकर उनके लिए अमान की तालिब हुई। आपने अमान दे दी। इसके बाद वो इकरमा के पीछे पीछे गईं और उन्हें साथ ले आईं, और उन्होंने वापस आकर इस्लाम कबूल किया, और उनके इस्लाम की कैफियत भी बहुत अच्छी रही। बाप तो पहली जंग में चला गया, बेटे को अल्लाह ने फतेह मक्का के मौके पर हिदायत दी। इसे क्या मिजाज दिखता है, नरमी, सॉफ्टनेस, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी आपके मिजाज में, कितनी लचक थी आपके रवैयों में। जान के दुश्मन, इश्तियारी मुजरिम, और आप कह रहे हैं चलो ठीक है, चलो तुम भी ठीक, तुम भी ठीक। इजी गोइंग पर्सनैलिटी थी अल्लाह के नबी की, अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। इब्ने खतल खाना काबा का पर्दा पकड़ कर लटका हुआ था। एक सहाबी ने खिदमत नबी में हाजिर होकर इत्तला दी। आपने फरमाई से कत्ल कर दो, उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। मुकैस बिन सुबाबा को हज़रत नुमैला बिन अब्दुल्ला ने कत्ल किया। मुकैस भी पहले मुसलमान हो चुका था, लेकिन फिर एक अंसारी को कत्ल करके मुर्तद हो गया और भाग कर मुशरिकीन के पास चला गया। हारिस मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अज़ियत पहुंचाया करता था। इसे हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कत्ल किया। हब्बार बिन अस्वद वही शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को इनकी हिजरत के मौके पर ऐसा कचोका मारा था कि वो हौदज से एक चट्टान पर जा गिरी थी। इसकी वजह से इनका हमल साकित हो गया था। ये शख्स फतेह मक्का के रोज निकल भागा, फिर मुसलमान हो गया, और इसके इस्लाम की कैफियत अच्छी रही, यानी जो बचे बिलाखिर वो मुसलमान हो गए। तो हमेशा लोगों को मौके देने चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, अल्लाह ताला दुश्मनों को भी दोस्त बना देगा। इब्ने कत्ल की दो लौंडियों में से एक कत्ल की गई, दूसरी के लिए अमान तलब की गई और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह सारा के लिए अमान तलब की गई और वो भी मुसलमान हो गई। खुलासा ये कि 9 में से 4 कत्ल किए गए, 5 की जान बख्शी हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं कि जिन लोगों का खून रायगां करार दिया गया, इनके ज़िमन में अबू माशर ने हारिस बिन तलाल खुजाई का भी जिक्र किया। उसे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया। इमाम हाकिम ने इसी फहरिस्त में काब बिन जुहैर का जिक्र किया। काब का वाक़या मारूफ है, उन्होंने बाद में आकर इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के नबी की मदह की। इसी फहरिस्त में वख्शी बिन हर्ब और अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इब्ने कत्ल की लौंडी अरनब है जो कत्ल की गई, और उम्मे सात है ये भी कत्ल की गई, जैसे कि इब्ने इसहाक़ ने जिक्र किया। इसी तरह मर्दों की तादाद 8 और औरतों की तादाद 6 हो जाती है। हो सकता है कि दोनों लौंडियाँ अरनब और इब्ने सात हों, इख्तलाफ नाम का हो या कुन्नियत या लकब का। बहरहाल आपका मेरे इससे कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, कैसे उस वक्त के हालात थे उनके मुताबिक ही सारे मामलात हुए। सुफवान बिन उमैया और फजाला बिन उमैर का कबूल इस्लाम। सुफवान का खून अगरचे रायगा नहीं करार दिया गया था, लेकिन कुरैश का एक बड़ा लीडर होने की हैसियत से उसे अपनी जान का खतरा था, इसलिए भी वो भाग गया। उमैर बिन वहब जुमही ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसके लिए अमान तलब की। आपने अमान दे दी और अलामत के तौर पर उमैर रदी अल्लाह अन्हु को अपनी वो पगड़ी भी दे दी जो मक्का में दाखिले के वक्त आपने सर पर बांध रखी थी। उमैर सुफान के पास पहुंचे, वो जद्दा से यमन जाने के लिए समंदर पर सवार होने की तैयारी कर रहे थे। उमैर उन्हें वापस ले आए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे 2 महीने का इख्तियार दीजिए। आपने फरमाया, तुम्हें 4 महीने का इख्तियार है। ईजी गोइंग पर्सनैलिटी, देखिए क्या खूबसूरत किरदार है हमारे नबी का। इसके बाद सुफवान ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसकी बीवी पहले ही मुसलमान हो चुकी थी। आपने दोनों को पहले ही निकाह पर बरकरार रखा, यानी दोनों में एक पहले मुसलमान हुआ, दूसरा बाद में, तो निकाह को लौटाया नहीं जाएगा बल्कि उसी निकाह पर रखा। फजाला एक जरी आदमी था, यानी बहादुर। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे थे, वो कत्ल की नीयत से आपके पास आया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि इसके दिल में क्या है। इस पर वो मुसलमान हो गया। आप देख रहे हैं कि गज़वाए फतेह मक्का के मौके पर आप किस तरह के मौजज़ात एक से ज़ायद हैं। इससे पता चलता है कि दूसरों को मरूब करने के लिए कभी कभी अल्लाह मैदाने जंग में फरिश्तों को भेजकर मदद करवा लिया करते थे, और कभी कभी इस तरह के मौजज़ात दिए जाते थे ताकि लोगों के दिल पर इस्लाम की धाक बैठे, और ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको मुझे हमेशा इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि जिस चीज़ में इस्लाम की शान हो, जिस चीज़ में इस्लाम की बड़ाई हो, उसके ऊपर फिर जम जाइए और फिर उसी के ऊपर अपने आप को बांध के रखिए। तो यहाँ फतेह मक्का का वो दिन पूरा हुआ जो एक बहुत बड़ा दिन था, जिसको कहते हैं इट्स अ बिग डे। इसके बाद क्या हुआ? फतह के दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा। फतह के दूसरे दिन खुतबा देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फिर खड़े हुए। आपने अल्लाह ताला की हमदो सना की और इसके शयाने शान, इसकी तमजीद की यानी मजद बयान की, बड़ाई बयान की। फिर फरमाया, लोगो, अल्लाह ने जिस दिन आसमान को पैदा किया इसी दिन मक्का को हराम यानी हुरमत वाला शहर ठहराया, इसलिए वो अल्लाह की हुरमत के सबब क़यामत तक के लिए हराम है। कोई आदमी जो अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता हो इसके लिए हलाल नहीं कि इसमें खून बहाए या यहाँ का कोई दरख्त काटे। अगर कोई शख्स इस बिना पर रुख्सत इख्तियार करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क़िताल किया, तो इससे कह दो कि अल्लाह ने अपने रसूल को इजाज़त दी थी लेकिन तुम्हें इजाज़त नहीं दी, और मेरे लिए भी इसे सिर्फ दिन की एक घड़ी में हलाल किया गया। फिर आज इसकी हुरमत इसी तरह पलट आई जिस तरह कल इसकी हुरमत थी। अब चाहिए कि जो हाजिर है वो गायब को ये बात पहुंचा दे। आप देखिए इसी तरह के अल्फाज थे ना हजरत अलविदा पे जो आगे आएंगे। तो गोया कि इस्लाम का पैगाम आप देते ही गए मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ हालात में। एक रिवायत में इतना मजीद इजाफा है कि यहाँ का कांटा ना काटा जाए, शिकार ना भगाया जाए और गिरी पड़ी चीज़ ना उठाई जाए। अलबत्ता वो शख्स उठा सकता है जिसका तारुफ कराए और यहाँ की घास ना उखाड़ी जाए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर इज़खर अरब की मशहूर घास जो मौज की हम शक्ल होती है और चाय और दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है क्योंकि ये लोहार और घर की ज़रूरत की चीज़ है। आपने फरमाया, मगर इज़हर यानी इसकी इजाज़त है। इससे भी पता चलता है कि स्टबन नहीं थे आप, एक बात पे अटक नहीं जाते थे बल्कि उसको अच्छे तरीके से लेते थे। बनु खुज़ाया ने उस रोज़ बनु लैस के एक आदमी को कत्ल कर दिया क्योंकि बनु लैस के हाथों उनका एक आदमी जाहिलियत में मारा गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, खुज़ाया के लोगों, अपना हाथ कत्ल से रोक लो, क्योंकि कत्ल अगर नाफे होता तो बहुत कत्ल हो चुका। तुमने एक ऐसा आदमी कत्ल किया है कि मैं इसकी दियत लाजिमन अदा करूंगा यानी ब्लड मनी। फिर मेरे इस मुकाम के बाद अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो मकतूल के औलिया को दो बातों का इख्तियार होगा, चाहें तो कातिल का खून बहा लें और चाहें तो इससे दियत लें। और आज भी देखिए ये चीज़ उसी तरह है। एक रिवायत में किसके बाद यमन के एक आदमी ने जिसका नाम अबू शाह था उठकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल इसे मेरे लिए लिखवा दीजिए। आपने फरमाया, अबू शाह के लिए लिख दो। हर एक की फरमाइशें पूरी करते दिखते हैं, कोई अकड़ नहीं, कोई फख्र नहीं। आज जश्न होता तो न जाने क्या होता। हमने आपके फातह होने की हैसियत से इस पे डिटेल से बात की कि इस्लाम में जश्न मनाना इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप तो और अल्लाह के आगे शुक्र के साथ झुके हुए दिखते थे। तो मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी जहाँ से आए थे आज वो जगह आपके लिए फिर हलाल हो गई। अब अंदेशे थे तो अंसार को थे, क्या होंगे सोचिए। काम तो बुरा हो गया, जिस वजह से गए थे वो वजह तो ख़त्म हुई, तो अब पता नहीं अल्लाह के नबी हमारे साथ मदीना जाएंगे कि नहीं, शायद मक्का में ही रह जाए। तो आइए देखते हैं कि अंसार के अंदेशों की क्या हैसियत थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का की तकमील फरमा चुके और मालूम है कि यही आपका शहर, आपकी जाए पैदाइश और वतन था, तो अंसार ने आपस में कहा, क्या ख्याल है, अब अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी अपनी सरजमीन और आपका शहर फतह करा दिया है तो आप यहीं क्याम फरमाएंगे। जहनों में सवाल होते थे, कल भी होते थे, आज भी लोगों के जहनों में आते हैं। इस वक्त आप सफा पर हाथ उठाए दुआ मांग रहे थे, दुआ से फारिग हुए तो दरियाफ्त फरमाया, तुम लोगों ने क्या बात की है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं अल्लाह के रसूल, मगर आपने इसरार फरमाया तो बिलआख़िर इन लोगों ने बतला दिया। आपने फरमाया, अल्लाह की पनाह, अब जिंदगी और मौत तुम्हारे साथ है। यहाँ भी देखिए आपको वही के ज़रिए पता चल गया, और यहाँ से पता चलता है कि अगर किसी बात की हकीकत जानने में कोई फ़ायदा हो तो इसरार किया जा सकता है कि जी आप मुझे बताइए किसने कहा है, क्या बात हुई है। बस सफल लोग अधूरे सच बोलते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं, याद रखिएगा। ऐसी गुमगु की बातों की बजाय खुलू कौलन सदीदा, सीधी बात कीजिए, क्योंकि इस तरह बहुत सारे मुगालते पैदा हो जाते हैं। बैत का वक्त आता है जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मक्का की फतह अता फरमा दी, तो अहले मक्का पर हक वाज़ेह हो गया और वो जान गए कि इस्लाम के सिवा कामयाबी की कोई राह नहीं। इसलिए वो इस्लाम के ताबेदार बनते हुए बैत के लिए जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पर बैठकर लोगों से बैत लेनी शुरू की। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु आपसे नीचे थे और लोगों से अहदो पैमान ले रहे थे। लोगों ने नबी सल्लम से बैत की। क्या थी बैत? कि जहाँ तक हो सकेगा आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे, यानी समय ना वाताना। इस मौके पर तफसीर मदारिक में ये रिवायत है कि जब अल्लाह के नबी मर्दों की बैत से फारिग हो चुके तो वहीं सफ़ा पर ही औरतों से बैत लेनी शुरू की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आपसे नीचे बैठे थे और आपके हुक्म पर औरतों से बैत ले रहे थे और इन्हें आपकी बातें पहुंचा रहे थे। इसी दौरान अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा भेस बदल कर आईं। दरअसल हज़रत हमज़ा की लाश के साथ उन्होंने जो हरकत की थी, इसकी वजह से वो खौफज़दा थीं कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहचान न लें। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत शुरू की तो फरमाया, मैं तुमसे इस बात पर बैत लेता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना करोगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही बात दोहराते हुए औरतों से इस बात पर बैत ली कि वह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और चोरी ना करोगी। इस पर हिंदा बोल उठी, अबू सुफियान बखील आदमी है, अगर मैं इसके माल से कुछ ले लूँ तो? अबू सुफियान जो वहीं मौजूद थे कहा, तुम जो कुछ ले लो वो तुम्हारे लिए हलाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। आपने हिंदा को पहचान लिया, फरमाया, अच्छा तो तुम हो हिंदा? वो बोली, हाँ अल्लाह के नबी, जो कुछ गुजर चुका है उसे माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा दे। इसके बाद आपने फरमाया, और जिना न करोगी। इस पर हिंदा ने कहा, भला कहीं हुर्रा यानी आज़ाद औरत भी जिना करती है? ज़रा से इस जुमले पर गौर कीजिएगा। उस दौर में लौंडियाँ और नीच तबके की औरतें ये काम करती थी। अल्लाह ताला आज फिर हम मुसलमानों को इस बुराई और इस खराबी से दूर कर दे। फिर आपने फरमाया, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगी यानी अबॉर्शन। हिंदा ने कहा, हमने तो बचपन में इन्हें पाला पोसा, लेकिन बड़े होने पर आप लोगों ने इन्हें कत्ल कर दिया, इसलिए आप और वो ही बेहतर जाने। मुराद था कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स आपके हाथों से मारे गए। याद रहे कि हिंदा का बेटा हंजला बिन अबी सुफियान बदर के दिन कत्ल किया गया था। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हंसते हंसते चित लेट गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबस्सुम फरमाया, यानी बहुत एलोगेंट थी अपनी स्पीच में हिंदा। इसके बाद आपने फरमाया, और कोई बोहतान ना घड़ोगी। हिंदा ने कहा, वल्लाही बोहतान बड़ी बुरी बात है, और आप हमें वाकई रुश्त और मकारम अखलाक का हुक्म देते हैं। फिर आपने फरमाया, और किसी मारूफ बात में रसूल की नाफरमानी ना करोगी। हिंदा ने कहा, अल्लाह की कसम, हम अपनी इस मजलिस में अपने दिलों के अंदर ये बात लेकर नहीं बैठी हैं कि आपकी नाफरमानी भी करें। यानी हर बात का देखिए तुर्की बतुर्की जवाब दिया जा रहा है, और आपको भी सूरत याद आ रही होगी, अल मुमता है ना, उसमें जो आखिरी आयतों में यही अल्फाज हैं बैत के जो यहाँ पढ़ रहे हैं हम। फिर वापस होकर हिंदा ने अपना बुत तोड़ दिया। वो इसे तोड़ती जा रही थी और कहती जा रही थी, हम तेरे मुतल्लिक धोखे में थे। ये है कुल जाल हक वज़ाहक़ अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। इस तरह से हक आता है, अल्लाह ताला इस हक को हमारी ज़ुबान पे भी जारी कर दे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक और बाब पूरा हुआ।